मेरे प्यारे युवा साथियों नमस्कार। आज 16 नवंबर 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों में विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं निलय प्रकाश वर्मा, आपका गांव है मोहम्मदगंज, जिला पलामू झारखंड से, और विमलेश राजपूत, आप हैं पिपरिया मध्य प्रदेश से। तो निलय और विमलेश, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी के अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं अक्सर कुछ सूचनाएं आप सबको देता हूं, तो पहले कुछ सूचनाएं दे दूं जो बहुत ही रूटीन की है। सूचना यह है फ्रेंड्स कि शनिवार और रविवार यानी कि इन दो दिनों में डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आपको प्रेस क्लिपिंग्स बाकायदे पढ़ने को प्रोवाइड की जाएंगी और साथ ही आपको कल कुरुक्षेत्र के 2 आर्टिकल्स, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और योजना पत्रिका के 2 आर्टिकल, उसमें भी एक हिंदी में एक इंग्लिश में, यानी कि टोटल 4 आर्टिकल्स भी दिए जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है जो मेंस के पैटर्न पर होता है और कोशिश भी यही रहती है कि ऐसे टॉपिक से प्रश्न उठाए जाएं और उनकी फ्रेमिंग इस तरीके से की जाए कि यदि आप मेंस में अपीयर होंगे तो उसमें आपको मदद मिल सके। और इसके साथ ही फ्रेंड्स कि हमारे जो क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। तो ये कुछ सूचनाएं थी दोस्तों। आज मुख्य विषय के रूप में मैं थोड़े से कटपटे से विषय को लेने जा रहा हूं और वह है प्रथम विश्व युद्ध। हालांकि आप सुनेंगे तो कहेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा विषय अटपटा कैसे हो सकता है। वो अटपटा इस मायने में है कि मैं थोड़े से अलग तरीके से इस पर बात करूंगा। ज्यादा बेहतर है कि जब हम उस पर बात करेंगे तभी बात करें। अभी मेरे पास चर्चा करने के लिए न्यूज के रूप में सिर्फ एक ही न्यूज है और वह है कि किस तरीके से भारत को धीरे धीरे अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार सफलताएं मिलती जा रही हैं, जिसका संदर्भ है G-SAT-29 जो अभी छोड़ा गया है। इससे पहले भी आपने अगर ध्यान दिया हो या आपको याद हो तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत, इसरो आप कह लीजिए मोटे तौर पर, जितने ज्यादा सफलताएं हासिल करता चला जा रहा है वो भारत के लिए एक बहुत गर्व का विषय बन चुका है, आप सबको मालूम है, और इस पर प्रश्न भी अब पूछे जाने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जब भी इस दिशा में हम कोई भी अगला कदम बढ़ाते हैं जो किसी भी मायने में महत्वपूर्ण या माइलस्टोन का काम करता है, तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक सजग स्टूडेंट के रूप में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उस पर विशेष ध्यान दें। मित्रों, इसी तथ्य को ध्यान में रखकर के आज मैं आप सबको 2 एडिटोरियल कमेंट इस विषय से जुड़े हुए प्रोवाइड कर रहा हूं। एक है बिजनेस स्टैंडर्ड का और दूसरा है दैनिक भास्कर का। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों एडिटोरियल कमेंट्स को पढ़ने के बाद बकायदे पॉइंट्स नोट करें कि इसके छोड़े जाने से, यानी कि जो अभी G-SAT-29 नामक संचार उपग्रह जो स्थापित किया गया है, इसको छोड़ने से भारत को क्या प्रसिद्धि मिली है या क्या उपलब्धियां मिली हैं, बकायदे आप पॉइंट वाइज उसे नोट करें तो बेहतर होगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नोट मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है कि जैसा भी आप एडिटोरियल कमेंट पढ़ेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। देखिए, जब हम किसी भी चीज को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं या नोट करते हैं तो हमारे दिमाग में भी वो उसी फॉर्म में मौजूद रहता है। इसका एक दूसरा तरीका होता है जब हम पॉइंट वाइज नोट करें, या तो आप पॉइंट दे दे करके नोट करते जाएं या 1, 2, 3, 4, 5 करके नोट करते जाएं। मुझे लगता है कि 1, 2, 3, 4, 5 करके नोट किया जाना ज्यादा वैज्ञानिक होता है, ज्यादा व्यावहारिक होता है, क्योंकि फिर हमारे दिमाग में यह चीज बैठ जाती है कि नहीं, इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स हैं। तो जब आप अपना आंसर लिखते हैं तो आपके दिमाग में वो हमेशा कौंधता रहता है कि 4 पॉइंट्स लिखने, 4 पॉइंट्स लिखने हैं, और बाई दिवे मान लीजिए कि आपको केवल 2 पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो आपके दिमाग में जो है कि 4 पॉइंट्स, तो ये जो 4 पॉइंट्स का दबाव है वो 2 पॉइंट्स को याद दिला देगा जो आप भूल रहे थे। उसका यह फायदा होता है और इस पर मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप बकायदे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके इसके पॉइंट्स बनाएं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकें। ये एक ऐसा काम है जिस फॉर्मेट में आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आगे के भी खासकर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड नोट्स तैयार करने चाहिए इसी फॉर्मेट में, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा। उदाहरण के तौर पर जब आप अभी G-SAT-29 संचार उपग्रह को स्थापित करने की बात करते हैं तो देखिए इसके फिर कुछ पॉइंट्स बनेंगे। पहला तो यह है कि भारत को अब इतना 4000 किलोग्राम वजन वाला संचार उपग्रह भेजने की क्षमता प्राप्त हो गई है, जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो उसने भेजा है वो लगभग 3400 किलोग्राम का है और 4000 किलोग्राम तक का हम भेज सकते हैं, तो ये क्षमता एक बहुत बड़ी बात है। और चूंकि भारत ने यह संचार उपग्रह भेज दिया है तो अब ये माना जा रहा है कि जो हमारा चंद्र अभियान है उसमें अब हमें बहुत मदद मिलेगी। इस सफलता के बाद हमारे वैज्ञानिकों को बहुत आत्मविश्वास प्राप्त हो गया है। अब जब G-SAT-29 उपग्रह गया है तो इसका तीसरा पॉइंट ये होगा कि ये जो दूर दराज वाले हमारे क्षेत्र हैं, जैसे कि कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां से अब आंकड़े जुटाना और अच्छे किस्म के चित्र प्राप्त करना हमारे लिए बहुत सुलभ हो जाएगा। ये उसका नेक्स्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए, मैंने आपको अभी थोड़े से इशारे के तौर पर बता दिया है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने ये 3-4 पॉइंट जो भी अभी चर्चा किए हैं तो ये आपके दिमाग में अलग पैटर्न पर बैठ गए होंगे, और यदि मैं इसे ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके सामने रखता तो दिमाग में ये जिस तरीके से स्थापित होते वो उतना अच्छा तरीका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। तो मित्रों, ये एक खबर थी। दूसरे खबर के रूप में आपने न्यूज में सुना है कि सिंगापुर से हमारे प्राइम मिनिस्टर लौट आए हैं और उसमें पूर्वी एशियाई देशों के साथ उनकी बातचीत रही, और इसको लेकर के हम लोग इससे पहले डेली ऑडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मित्रों, बस इतना रिपीट करना चाहूंगा मैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूर्वी एशियाई देशों, या कह लीजिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की, इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। दोस्तों, अब आइए मैं बात करता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय के लिए मैंने थोड़ा सा सिविल सर्विस के पिछले अनसॉल्व पेपर्स को देखते हुए कुछ अलग सा पैटर्न चुना है। मुझे नहीं मालूम कि यह कितना व्यावहारिक होगा, लेकिन यह मुझे जरूर लगता है कि अब स्टूडेंट्स को इतिहास के बारे में भी थोड़े से अलग तरीके से सोचना चाहिए सिविल सर्विस के में पूछे गए प्रश्नों को देखते हुए। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम विश्व युद्ध, इसे नाम दिया गया है प्रथम विश्व युद्ध। मैं आपसे ये चर्चा करने जा रहा हूं आज के मुख्य विषय के तहत कि क्या वास्तव में यह विश्व युद्ध था, कहीं ऐसा तो नहीं कि था तो यह मूलतः यूरोपीय युद्ध, लेकिन इसे कह दिया गया है विश्व युद्ध। मित्रों, इस पर मैंने बहुत विचार किया, बहुत अध्ययन किया, और उन सब के बाद जो मेरा निष्कर्ष निकला है वो ये कि नहीं, सही मायने में इसे विश्व युद्ध न कहकर यूरोपीय युद्ध ही कहा जाना चाहिए। और इसके लिए बकायदे आप कुछ तथ्य दे सकते हैं, कुछ तर्क दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई, राइट? सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले इसे बेसिकली ग्रेट वार कहा जाता था, ग्रेट वार, महान युद्ध। अमेरिकन इतिहासकार भी इसे अपने यहां महान युद्ध ही कहते थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसी कोई बात नहीं थी। फर्स्ट तो आप लगा ही नहीं सकते थे, लेकिन विश्व युद्ध तो कह ही सकते थे। वो तो प्रथम शब्द आपने तब लगाया जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो आपको लगा कि अच्छा ये एक और विश्व युद्ध हो गया, तो आपने उसको प्रथम कह दिया, अदरवाइज ये ग्रेट वार ही कहलाता था। तो 1939 में इसका उपयोग हुआ। जहां तक विश्व युद्ध शब्द का सवाल है, जैसे ही इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, आपको मालूम है कि इस युद्ध की शुरुआत 1914 में हो गई थी, और ये शुरुआत हुई थी जुलाई, 28 जुलाई को, और उसके बाद 20 सितंबर को एक जर्मन इतिहासकार थे, चाहे तो आप रेफरेंस नोट कर सकते हैं, उनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकल, हैकल की स्पेलिंग है HACKEL, हैकल, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने एक रेफरेंस दिया उस समय का एक अखबार हुआ करता था, आप कह लीजिए इंडियाना पॉलिस स्टार, द इंडियाना पॉलिस स्टार, उसमें यह आशंका व्यक्त की गई थी कि अब डर लग रहा है कि यह युद्ध, यह यूरोपीय युद्ध, देखिए उसमें यूज किया, यह यूरोपीय युद्ध अपने सही अर्थों में कहीं विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। वो यूरोपीय युद्ध ही कह रहे हैं लेकिन जिस तरीके से लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं, दूसरे दूसरे देश उसमें शामिल होते जा रहे हैं, तो उससे ये आशंका पैदा हो रही है कि पूरी की पूरी दुनिया में ना कहीं फैल ना जाए। उस समय उन्होंने विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग किया और इसके बाद 20 साल तक कोई इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। 1939 में जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जिसमें कैनेडियन हिस्टोरियंस भी शामिल हैं, उन्होंने फिर इसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया। ये तो इसके नामकरण के पीछे कुछ मैंने तर्क आपको दिए हैं। दूसरा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार और उस समय के पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको कुछ तथ्य और मिलते हैं अपनी बात के समर्थन में। जैसे उदाहरण के तौर पर यह जो पूरा का पूरा युद्ध जो लड़ा गया है 1914 से लेकर के और 1918 तक, चार साल तक ये युद्ध चला है, सवा चार साल, चार साल और तीन महीने तक चलने वाला ये युद्ध था। आप देखिए कि यूरोप की धरती पर ही ज्यादातर लड़ा गया है, यूरोप की धरती पर ही। हाँ, नो डाउट कि थोड़ा सा इसके और नीचे आकर के जो अफ्रीका देखेंगे आप, यूरोप और अफ्रीका बीच में केवल भूमध्य सागर और ये सब है, तो वो उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्से में आ गया था और कुछ हिस्सा, कुछ युद्ध मध्य एशिया तक आ चुका था। अदरवाइज मेनली ये यूरोपीय धरती पर ही लड़ा गया है और इसमें भाग लेने वाले जो देश भी है, लगभग 30 कंट्रीज हैं, वो यूरोप के ही हैं। और भारत जैसे देशों को अगर उसमें भाग लेना पड़ा तो भारत राष्ट्र किसके कब्जे में था, वो ब्रिटेन के कब्जे में था। हमारे पास अगर सत्ता होती तो पता नहीं हम क्या निर्णय लेते, और हमने सेकेंड वर्ल्ड वार में दिखा दिया। आपको ध्यान है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में 1935 के एक्ट के तहत 1937 में भारत की सरकार बन गई थी, हमने सरकार बना ली थी, और जब 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई तो ब्रिटेन ने बिना हमारी हमसे पूछे और हमारी सेना को सेकेंड वर्ल्ड वार में भेज दिया, और इसके विरोध में फिर भारतीय सरकार ने त्याग पत्र दे दिया था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल किए जाने का उसने विरोध किया। तो अगर हमारी सरकार उस समय रही होती तो हो सकता है हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल होना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि हम आपके अधिकार क्षेत्र में थे तो आपने हमें भेज दिया। और उस समय जो दूसरे देश शामिल हुए, इनफैक्ट सच पूछिए तो उन पर भी कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों का ही उपनिवेशवादी अधिकार था, तो उनकी तो कोई मर्जी थी ही नहीं, तो उनको किसने भेजा? यूरोपीय देशों ने ही भेजा। हां, चीन, जापान, ये जरूर दो देश रहे हैं जो सीधे सीधे उपनिवेशवादी सत्ता के अधीन तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन पर इस बात का दबाव जरूर था। अदरवाइज तो ज्यादातर यूरोपीय राष्ट्र ही इसमें शामिल हुए हैं। और जो संधियों का जो जाल बना, जिस जाल ने इतना उलझा दिया मामले को कि वो विश्व युद्ध में तब्दील हो गया, वो केवल यूरोपीय देशों के बीच की गई संधियां थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के खत्म हो जाने के बाद देखिए, दूसरे देशों में भी आजादी के आंदोलन चल रहे थे, भारत आजादी के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने उनको तो आजाद नहीं किया, जबकि यूरोप के पांच देश उसके बाद बने हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। फिनलैंड बना, एस्टोनिया बना, लाटविया बना, लुथियाना बना और पोलैंड बना, लेकिन एशिया का तो कोई देश आजाद नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम इसे कैसे विश्व युद्ध माने? सैनिक भी जो लड़ने वाले थे, लगभग 7 करोड़ सैनिकों ने कहा जाता है भाग लिया, उसमें 6 करोड़ सैनिक यूरोप के हैं, बाकी दूसरे देशों के हैं। तो सैनिक भी मूलतः यूरोप के हैं, जो धरती जिस पर युद्ध लड़ा गया वो भी खासकर यूरोप की है, और जो सबसे ज्यादा विध्वंस हुआ है वह भी यूरोप का है, यूरोप का विध्वंस हुआ है। हाँ, अमेरिका भी इसमें जरूर शामिल हुआ था, लेकिन वो बहुत बाद में शामिल हुआ था, अप्रैल 1917 में शामिल हुआ है, और आपको मालूम है कि नवंबर 1918 में युद्ध खत्म हो गया। तो आखिरी के वो एक डेढ़ साल तक वो युद्ध में शामिल रहा, और वो भी उतनी सक्रियता से उसने भाग नहीं लिया था जितनी सक्रियता से उसने सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया। तो मित्रों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्रिटेन जैसा देश या यूरोपीय देश जो उस समय पूरी दुनिया पर शासन कर रहे थे, उनको लगा कि नहीं यार, इस युद्ध की जिम्मेदारी जिसमें इतना विध्वंस हुआ है यूरोप क्यों ले या हम क्यों ले, इसे विश्व युद्ध कह दिया जाए। विश्व युद्ध या कि भैया इसमें तो पूरी दुनिया ने ही भाग लिया है, ये दुनिया के द्वारा छेड़ा गया युद्ध था, ये केवल यूरोपीय देशों के बीच में छेड़ा गया युद्ध नहीं था, ताकि कम से कम दुनिया के लोग उसे बर्बर न समझे, झगड़ालू न समझे। हो सकता है कि इसके पीछे यह एक धारणा रही हो। मित्रों, मैं इतिहासकार नहीं हूं, इतिहास का विद्यार्थी जरूर हूं, इतिहास विषय का प्रेमी जरूर हूं, और उसके आधार पर सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में जो कुछ पॉइंट्स आए हैं उसे मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। आप लोग इस पर विचार कीजिए, कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, अगर काम आ जाए आपके तो ये मेरा सौभाग्य होगा, और काम अगर नहीं भी आया तो चलिए कम से कम विषय को एक नई तरीके से देखने की कोशिश हम लोगों ने की है, और यही एक उपलब्धि हो सकती है। राइट फ्रेंड्स, तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं उपलब्ध करा रहा हूं, मित्रों देख लीजिएगा। सभी ईमेल लिखने वाले आप मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से चार दोस्तों के नाम हैं निशु, सतीश यादव, शशिकला चौहान और मिलन आनंद। आप गांधीनगर गुजरात से हैं, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अब दो दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और मुझे इजाजत भी दें। नमस्कार।